देव सरूप को सोजन पाई, देव सरूप को सोजन पाई,
देव सरूप को सोजन
नित सत संग जो सेवक माई, नित सत संग जो सेवक माई,
नित सत संग जो सेवक माई,
नित सत संग जो सेवक मूढ़मती जाए पाए विवेका, मूढ़मती जाए पाए विवेका,
मूढ़मती जाए पाए विवेका, मूढ़मती जाए पाए विवेका,
सत सरूप का अर्थे लेखा, सत सरूप का अर्थे लेखा,
सत सरूप का अर्थे लेखा, सत सरूप
अपने पाप की करे निगरानी, अपने पाप की करे निगरानी,
अपने पाप की करे
मलिन में आवे पछतानी, करनी मलिन में आवे पछतानी,
करनी मलिन में आवे पछतानी, करनी मलिन में आवे पछतानी,
मानुष जन्म की सार लखाई, मानुष जन्म की सार लखाई,
मानुष जन्म की सार लखाई, मानुष जन्म की सार लखाई,
जब सत्संग में प्रीत लगाई, जब सत्संग में प्रीत लगाई,
जब सत्संग में प्रीत लगाई,
जब सत्संग में प्रीत लगाई, दुस्तर जाल से निस्तर होए, दुस्तर जाल से निस्तर होए,
दुस्तर जाल से निस्तर होए, दुस्तर जाल से निस्तर होए,
मार्ग धर्म में प्रीत लखोए, मारग धरम में प्रीत लखोए। देव स्वरूप को सोजन पाई नित सत्संग जो सेव कम है। ये मनुष्य जो निरंतर सत्विचार का सेवन करता है, कहते देव स्वरूप को सोजन पाई। वो देव स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। ये देव स्वरूप क्या है? ये एक तो साधारण भाषा में हम जो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई मनुष्य हमारे बीच में बहुत अच्छा है, ईश्वर विश्वासी भी है, सदाचारी भी है, परोपकारी भी है, दूसरे का दुख दर्द उसको दिखाई पड़ता है, उसकी मदद करने की कोशिश करता है, इस प्रकार के गुण जिसके अंदर होते हैं, तो हम कह देते हैं ये इंसान देवता है। तो दूसरे के लिए जीता है वो देवता है। तो एक तो साधारण रूप में जो हमारे व्यवहार की बात है, एक ये देव स्वरूप होता है। ये देव स्वरूप भी बिना सत्याचार के कैसे बनेगा? आप में से कितने प्रेमी ऐसे हैं जिनके अंदर ये गुण हैं, उनके व्यवहार से पता लग जाता है, इसलिए वो सारी संगत के प्रिय बन जाते हैं, संगत उनको चाहती है। इसे मेल मिलाप हो, उनके पास उठना बैठना हो, तो देवता और देवी ये एक हमारी व्यवहारिक स्थिति है। लेकिन एक देवता आंतरिक होता है, वो भी नहीं होता, वो देवता कैसे बनता है? हम जानते हैं कि जो मेरे मन के अंदर वासना पलती है, जिसको हम इच्छा कह देते हैं, संसार के जितने भी सुख भोगते हैं, जितने भोग विलास करते हैं, उनके संस्कार, उनके इंप्रेशंस मन में इकट्ठे होते रहते हैं। और मन ऐसा ऑर्गन है जो कभी भरता ही नहीं। सैकड़ों जन्म के संस्कार, सैकड़ों जन्म के कर्मों के फल इस मन के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसा विलक्षण ऑर्गन मेरे अंदर है, दिखाई नहीं पड़ता है, किसी ने अपने मन को देखा नहीं, लेकिन सारी क्रियाएं यही कराता है मुझसे। मेरा जो शरीर, ये इक्विपमेंट है मन के लिए, इस शरीर के द्वारा ये मन ही क्रिया कराता है, क्योंकि मन में डिजायर उठती है, तो डिजायर मुझको बेचैन करती है या बुद्धि को बेचैन करती है, तो फिर उस बेचैनी से मुक्त होने के लिए मैं शरीर से क्रिया करता हूँ, इंद्रियों से क्रिया करता हूँ, फिर इंद्रियों से ही उनका उपभोग करता हूँ, तब मन के अंदर वो मुझको शांति से लगती है कि मेरी इच्छा पूरी है। तो लेकिन जो देव स्वरूप क्या होता है, वो त्याग से बनता है। तो सत विचार आपको त्याग सिखाता है। हर संसार की इच्छा आपके मन के अंदर संकल्प उत्पन्न करती है, और उस संकल्प की निवृत्ति या उस संकल्प की पूर्ति मेरी कर्म इंद्रियों के द्वारा और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होती है। जो साजो सामान चाहिए उस इच्छा पूरी करने के लिए, वो कर्म इंद्रियों के द्वारा मैं पूर्ण करने की कोशिश करता हूं। जब सामग्री तैयार हो गई, फिर ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसका सेवन करता हूं, उसका स्वाद लेता हूं, उसका दर्शन करता हूं। तब क्या होता है, मन की डिजायर शांत हो जाती है, जब डिजायर शांत होती है तब मुझको खुशी प्राप्त होती है। तो खुशी जिसको प्राप्त होती है या दुख जिसको प्राप्त होता है वही तो मैं हूं। इसका नाम महाराज जी जीव करें या बुद्धि करें। तो मन भी मेरा है, ज्ञान इंद्रिया भी मेरी है और कर्म इंद्रिया भी मेरी है और ये तीनों चीजें शरीर में स्थित है। तो मैं बेचैन होता हूं मन के अंदर इच्छा का संकल्प उठने के कारण। क्यों? संकल्प उठ गया वो मुझको बेचैन कर देता हूं। अब उस बेचैनी से मुक्त होने के लिए या ये कहिए संतोष की प्राप्ति के लिए मैं फिर इस देह रूपी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता हूं, उपयोग करता हूं, कर्म इंद्रियों के द्वारा और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। तो आप बताइए किसी भी मेथड से यदि मैं मन के संकल्प का उठना बंद कर सकूं किसी भी मेथड से तो मैं तो हमेशा ही शांत रहूंगा। मेरी बेचैनी का जो स्रोत है तो सत्विचार क्या है? सत्विचार आपको यही तो सिखा रहा है कि मन तेरी बेचैनी का स्रोत है और तू इस स्रोत को और मजबूत कर रहा है। जितनी इच्छा पाल रहा है, जितना विकास करने की सोच रहा है तो मन को ही तो मोटा कर रहा है और क्या कर रहा है। इसीलिए जब तक मैंने मनुष्य जन्म लेकर अपने विज्ञान को सीखने की कोशिश नहीं की और केवल संसारियों की नकल करके मैं जीता रहा तो फिर मेरी दुर्गति ही होती है। मुझे प्राप्त कुछ भी नहीं होता। सत्य यह है जो कुछ भी स्थिति में लेके पैदा हुआ था उससे बुरी स्थिति में मैं शरीर का त्याग करके संसार से विदा हुआ। सत्य मेरे बारे में इसीलिए वाणी कहती है सत विचार जो नर विचारी पावे विश्वास परम सुखकारी। तो कौन सा विश्वास? इस शरीर से हटके एक और चीज भी तो है जिसके बारे में मैं सोचता ही नहीं। दुनिया कुछ कहती सिखाती ही नहीं कुछ। उसका नाम है ईश्वर। मन मेरे अंदर है, इंद्रिया मेरे शरीर में स्थित है लेकिन मैं भूला रहा हूं, भूल रहा हूं। शांति का सागर, शांति का स्रोत, आनंद का स्रोत इस देह के अंदर मौजूद है जिसका नाम ईश्वर। हर चीज का नाम होता है ना, इंद्रियों का भी नाम है, हर ऑर्गन का नाम होता है। कुछ ऑर्गन सूक्ष्म है जो किसी इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट नहीं किया सकते, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो मुझे आंख से भी दिखाई पड़ते हैं, तो विचार से भी मैं समझ लेता हूं। तो ईश्वर है वो सत्ता मेरी देह में मौजूद है जिसके कारण ये देह जीवित है, काम कर रही है। तो बताइए जिसके कारण ये मेरी देह काम कर रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है नहीं? उसको तो मैं महत्व ही नहीं देता। जरा भी पेट खराब हो गया या हाजमा कमजोर हो गया डॉक्टर के पास जाता हूं, इलाज पूछता हूं मेरा हाजमा दुरुस्त कैसे होगा। ईश्वर का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन सारे मरीज का इलाज जो है वो ईश्वर ही है। ईश्वर वो मंजिल है जिसकी तरफ यदि जीव बढ़ा तो संसार का हर प्रकार का रोग उसका समाप्त हो, हर प्रकार के रोग से ये मुक्त हो जाता है। महाराज जी का भी शरीर रोगी है लेकिन हर प्रकार के रोग से वो मुक्त है। समाधि में तो कोई कमी नहीं है। शिमला में जब महाराज जी थे उस समय बड़ा काम का तेज दर्द था, उस समय उनको पेट का रोग भी हुआ था, वहां पर रात भर समाधि में रहते थे। भगत जी एक दिन बोले महाराज जी दिन में आप दर्द की दुहाई देते हैं, रात को आपका काम का दर्द कहां चला जाता है? वो आप खले में ठंड में बैठ जाते हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं, प्रेमी जब मन ही नहीं रहा तो दुख और तकलीफ कैसी? अब बताइए, शरीर तो मेरा ही है ना, मेरा मन कितना बिगड़ जाता है, कितना परेशान कर देता है, शरीर में कोई तकलीफ हो जाती। एक महाराज का मन भी होते हुए भी महाराज उससे मुक्त है। समाधि का मतलब होता है इस देह इंद्रिया मन का वहां पर उसकी पहुंच नहीं है। इसीलिए जो शांति का स्रोत है, जो चैन का स्रोत है, जो आनंद का स्रोत है, वो मन के ऊपर है। सत्पुरुष उसी के लिए ये सारा विज्ञान हमको समझा है। इसी कह रहे हैं इंद्रियों का संयम, मैं इंद्रियों को बिगाड़ लेता हूं, अनधिकार चेष्टा भी करता हूं, जहां मेरा अधिकार नहीं है वहां भी चेष्टा करता हूं, और साथ पाप करके भी इंद्रियों के भोग पूरे करने की कोशिश करता हूं। तो किस नरक में जाऊंगा, मुझे होश है इस बात का, मेरी एक गलती की भी सजा ईश्वर माफ नहीं करता, एक छोटी सी गलती की भी सजा ईश्वर मेरी माफ नहीं करता है, मुझको भोगनी ही पड़ती है। तो अब बताइए, यदि याद करो, यदि आपको याद आ जाए कि मैंने क्या क्या गलत कर्म किए, इसे कारण मेरे कारण दूसरे को दुख पहुंचा है, उन कर्मों को यदि याद करो तो आप कांप जाओगे, खुद ही कांप जाओगे। जैसे कि बाबूराम महाजी के जीवन में आया एक प्रेमी, तो जब उनके सामने वो पहुंच गया भाग्यवश, पंडित राम जी आदि के साथ में था वो, तो सत्संग सुना, पीछे बैठा हुआ था, सत्संग में उसकी कोई रुचि नहीं, लेकिन पहली बार जिंदगी में सत्संग सुना था, प्रभु कृपा उसके ऊपर, उसको ऐसा लगा कि महाराज जी जो कुछ भी सत्संग कर रहे हैं, जो कुछ भी बातें बता रहे हैं, सब मेरे ऊपर घटित होती हैं। उसको ऐसा एहसास हुआ सब कुछ मेरे ऊपर घटित होती है, ये वो उनको समझ रहा। सत्संग खत्म हुआ तो महाजी के पास पहुंच गया। अब देखिए, पापी आदमी है, बड़े पाप किए, इसको पता है मैंने क्या क्या पाप किया, कितने लोगों को धोखा दिया। अब महाजी के सामने वो कहता है, महाराज जी मैंने तो बड़े पाप किए, जो विचार मैंने सुने हैं उसे तो पता लगता है, इसका फल तो दुख रूप मुझे भोगना पड़ेगा। महाजी से कहता है वो अपने दिल की बात, तो महाजी कहते हैं प्रेमी ये बात तो ठीक है, जो तूने कर्म कर लिए जिसको तू भी जानता है कि गलत है, किसी का पैसा कोई मार ले उसको पता है ये पाप है, किसी की स्त्री पर गलत नजर रखे उसको पता है ये पाप, वो जानता है, अच्छी तरह जानता है, लेकिन फिर भी कामना क्योंकि उसकी इतनी गहरी है कि अपने आप को रोक नहीं पाता, पाप कर बैठता है। तो बाबूराम की यही हालत थी, हर प्रकार का दुष्कर्म उसने जीवन में किया। तो माली का प्रेमी तूने किया है तो इसका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, ये तो माफ नहीं थी। वो कांप गया, फूट फूट कर महाजी के सामने ही रोने लगा, महाजी मैं कैसे भोगूंगा, इतने पाप कर लिए मैंने कैसे भोगूंगा इसको। और उसकी बुद्धि जागृत हो गई वहां। तब महाराज जी ने अपने कुर्ता आगे फैलाया उनके, बोले प्रेमी आज तक जो पाप किए इस झोली में सब डाल दे, इसके फल को ये अपने अपने ऊपर भोग लेंगे, लेकिन आज के बाद तो नहीं, यदि कोई गलती करेगी तो तुझको ही भोगना पड़ेगा। उस दिन से उनसे दीक्षा लेके वो शिष्य बन गया, जीवन का पूरी तरह से बदल गया। लेकिन हमें क्या कोई ऐसा गुरु मिलेगा क्या जो हमारे पाप अपने शरीर पे भोग, हमने ही भोगने। वो एक अलबेला मनुष्य था, उसके भाग उदय होने का समय आ गया था, कोई अच्छे पुण्यकर्म करके भी आया होगा जिसके कारण यह समय उसको मिल गया कि हम जो गलतियां कर रहे हैं वो हमने ही भोग ली, बचाव कोई नहीं, कई जन्म माजी कहते हैं भोगनी पड़ती। इस जन्म में जब तुझको होश मिला है, तुझको सत्संग मिला है, पूर्ण गुरु का ज्ञान मिला है, तो क्यों गलती कर रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार, प्रभु के नियम के अनुसार क्यों नहीं सोचता? इसलिए कह रहे हैं, देव सरोग को सोजन पाई नित सत्संग जो सेव कमाई, वो कोशिश करके देव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस देह के अंदर वो देव स्वरूप क्या होता है? इंद्रियां और मन, ये बुद्धि को बाहर ले जाते हैं, संसार की ओर ले जाते हैं। साधना करते करते, इस ज्ञान के अनुसार, इस विवेक के अनुसार विचार करते करते, मुझको संसार से वैराग्य हो जाता है। मन का जो राग है ना, वो टूट जाता है, क्योंकि बुद्धि जब विवेकशील हो जाती है तो मन बुद्धि के लिए, बुद्धि से बाहर पर कैसे जा सकता है? तो बुद्धि के अंदर जब विवेक आता है तो मन इंद्रियां से संयम में आ जाता है, तो इनकी गति अंतर्गत हो जाती है। अर्थात मन के अंदर संसार के संकल्प का उठना बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में जो इस जीव का अंदर अनुभव है, उस स्थिति को देव गति बोलते हैं, देवता ज्ञान बोलते हैं, उस मनुष्य को देवता बोलते हैं। ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो ऊपर की बात है, वो तो समाधि और समाधि से भी आगे की बात है। लेकिन मन के ऊपर पहुंच जाना, गुरु आज्ञा का पालन करके या शास्त्र के मार्गदर्श को जीवन में अंगीकार करके, तो मैं मन के ऊपर जाता हूं, अर्थात मन के अंदर थिंकिंग का उठना या संकल्प का उठना बंद हो जाता है, उस स्थिति में मुझे पता लगता है क्या शांति का सागर मन के ऊपर मौजूद है। मैं तो मन के नीचे इंद्रियों के अशांति के सागर में डूबा पड़ा था, मुझे पता ही नहीं कि मन के ऊपर जो है ईश्वर खुद मौजूद है, शांति का सागर वहां मौजूद है। इसीलिए सत्संग कोई साधारण चीज है, वेश की चीज है, ये उसको अंदर ले जाती है, इंद्रिय और मन के ऊपर ले जाती है। इसीलिए भाई कहते प्रेमी, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी, मूल बर्बादी अर्थात जिस पर्पस के लिए मनुष्य जन्म मिला था तो उससे उल्टा चल रहा है। इसीलिए मन के नीचे की हालत में जीना, इसको पशु जन्म कहते हैं, पशु योनि बोलते हैं, क्योंकि पशु मन के ऊपर नीचे जीता है, मन के ऊपर जा ही नहीं सकता, उसको समझ ही नहीं है। तो इंसान को बुद्धि दी गई है, ये मन के ऊपर की चीज सीख सकता है और कोशिश करके मन के ऊपर जा सकता है। इसलिए मैंने बनना था देवता, बन गया मैं पशु। तो जो इंसान इस दो हाथ पैर का, इसने संसार में अपना लक्ष्य बना लिया, इसमें सफल होना है, मैंने याद रखिए वो सफल तो नहीं हुआ, वो पशु बनकर इस संसार से विदा हुआ, इसके ऊपर कोई ऐसी कीमत ही नहीं। इंद्रिय भोगों के लिए जीता है, वो सारे शास्त्र एक सुर से कह रहे हैं कि वो पशु है, इसमें कोई उनको डाउट नहीं है। मैं कितने भी एडजेक्टिव अपने नाम जाके लगा लूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं PhD हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, लगा लिया एडजेक्टिव, लेकिन है तो पशु। और ये वो भी काम तो बेईमानी से कर रहा है, विकार प्रधान तेरा जीवन है, तो तू वहां शब्दावली जो रही है, संत अभिलाष नहीं पढ़ ले, उपनिषद में गया है, वो पशु से भी नीच है। उस मनुष्य के लिए पशु से भी बीच शब्द इस्तेमाल किया गया। तो मैं अहंकार को जीता रहा हूं, लेकिन सजा भोगने का जब वक्त आएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। ईश्वर अपने नियम को नहीं बदल, जो कुछ भी तूने किया है मन की इच्छा पूरी करने के लिए, वो तो सारा फल तुझे भोगना होता है। तो महाराज कहते प्रेमी, कई जन्म तो ऐसे ही गवा देता है सजा भोगने को, इसे वर्तमान जन्म में तुझे भाग्य मिला है, एक शुद्ध सत्संग मिला है, एक विशुद्ध गुरु का आश्रम मिला है, उसका मंत्र तुझको मिला है, इतनी सामग्री तुझको मिली है इस बंधन से मुक्त होने के लिए, और तू बंधन बढ़ा रहा है। इसलिए मानव जन्म की माफी नहीं है, जिसने मदहोशी में यह जन्म व्यतीत किया उसको कई जन्म बुरे दिन देखने पड़े। आगे कह रहे हैं, मूढ़ मति जाए पाए विवेका, सत स्वरूप का परखे लेख। कहते हैं कि जो भी सदविचार का संग करता है, कहते हैं कि उसकी मूढ़ मति या गलत मति उसकी दूर हो जाती है, और बुद्धि में विवेक आया। विवेक का मतलब जो सही विचार है जिसमें कल्याण है उसकी समझ आ जाती है। सत स्वरूप का परखे लेना, और इस देह के अंदर वो सत स्वरूप मौजूद है जिसको ईश्वर कहते हैं उसका निर्णय भी हो जाता है। लेख का मतलब होता है लेख नहीं है, लेख का मतलब है निर्णय। तो उसको परख लेता है, उसको समझ लेता है कि हाँ ईश्वर सत्ता उसी प्रकार इस देह के अंदर मौजूद है जैसे कि मेरा मन मौजूद है। तो सिर्फ वो मन ईश्वर में लगाने की कोशिश करता है, मन भोगों में और पाप में लगाने की कोशिश नहीं करता, मन वही है। आगे कहते हैं अपने पाप की करे निगरानी, करनी मलिन में पावे पछताने। तब सतबुद्धि जब उसके अंदर स्थित होती है तो कहते हैं कि अपने पाप की निगरानी करता है कि मेरे मन में जो भी इच्छा उठती है इसके द्वारा मुझसे पाप तो नहीं होगा कहीं, इसकी परमिशन सतपुरुष या शास्त्र दे रहे हैं क्या इच्छा पूरी करने की? यदि नहीं दे रहे हैं तो कहते हैं कर भी लिया पास में, करनी मलिन में पावे पछताने। अब पूरी करने की इच्छा नहीं करता उसको, उसकी कोशिश नहीं करता, बल्कि जो कर लिया है उसके लिए पछताता है, रिपेंट करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है प्रभु अज्ञानी था मैं, कर बैठा गलतियां कर बैठा, अब मुझे माफ कर दो, अपने चरणों का आसरा दो, अपने में मेरा मन लगाओ। तो ईश्वर से मिलने की, ईश्वर की तरफ जाने की प्रार्थना करता है और पाप के लिए पछताता है। आगे कहते हैं मानुष जन्म की सार लखाई, जब सत्संग में प्रीति लगाई। तो सत्संग में अर्थात सत्विचार में प्रीति लगाता है, वास्तव में सत्विचार की जरूरत समझता है। जैसे एक स्टूडेंट जो ब्रिलियंट तो है लेकिन ब्रिलियंट से टाइम यूज करता है, पैसा ज्यादा कमाने में यूज करता है, इसलिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेता है, बड़ा सैलरी का पैकेज मिल जाता है। तो उसी प्रकार ये सत्संग में प्रीति लगती है, उसमें जीवन की सफलता देखती है। कैसे जल्दी से जल्दी मैं ईश्वर की तरफ बढ़ूं और अंदर सफलता प्राप्त करूं। कहते हैं दुस्तर जाल से निस्तर होए, मार्ग धर्म में प्रीति लगो। तब ये धीरे धीरे जो दुस्तर जाल है, दुस्तर जाल क्या है, इंद्रिय भोगों का जो जाल है इसको दुस्तर या कठिन जाल कहते हैं। ये पूरे जीवन को इतनी कठिनाई में डालता है, इससे तरह छुटकारा मिल जाता है और मार्ग धर्म में प्रीति लगो, फिर धर्म के मार्ग में इसकी प्रीति हो जाती है, इसकी डिजायर सारी उधर मुड़ जाती है, इसमें उस मार्ग में चलने में सफलता चाहती है। तो कभी मानुष जन्म सफल हो गए, जब प्रभु दाता चित आए प्रभु के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन। धर्म का रूप ना जीव को ये, ना कोई मजहब और पंथ, मंगत यत्न जो मुकत का सो धर्म कर बाचे गए। मुक्ति का जो यत्न है अर्थात मन से मुक्ति, और कोई मुक्ति नहीं, मन एलिमिनेट हो जाता है, मन जो इतनी बड़ी बीमारी था ये गायब ही हो जाता है, समाप्ति परमानेंट समाप्त हो जाती है। अब बताइए मन की समाप्ति की जगह क्या होता है, इस मन को कौन ईश्वर रिप्लेस कर देता है, मन की जगह मुझको ईश्वर का अनुभव हर वक्त रहता है, मेरी समाधि लगी रहती है जैसे महाराज की लगी रहती है, वहां से वाणी आ रही है, वहां से मंत्र आ रहा है, सारी दुनिया जो भी जानती है उनको उनके पास जाने की इच्छा कर रही है कि मुझको भी शांति मिल जाएगी। तो वो स्थिति तेरे अंदर ही प्राप्त हो सकती है, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चले। तो यतन मुक्ति का यतन क्या है, वासना से मुक्ति ही मुक्ति का यतन है, और वासना से मुक्ति प्रभु प्राप्ति से ही होती है। इसलिए मानव जन्म लेकर मैंने संयम रखना होता है, इंद्रिय भोग को मल्टीप्लाई करना नहीं होता, उसको बढ़ाना नहीं होता, विकास करना नहीं होता, इसलिए होश का जीवन जिए, सत्विचार को सीखने की कोशिश करें ताकि सही मार्ग पर हमारा मानव जन्म अग्रसर हो सके।